इसे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव सब लोग बोलिए आवाज को सुनाई पड़ना चाहिए ना, जितने लोग हैं उतनी आवाज तो होनी चाहिए ना कम से कम। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतां यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो अब दोहराने का समय नहीं है, समय बहुत कम है, इसलिए सीधे शब्दार्थ बोलेंगे। मेरे पीछे बोलिए शब्दार्थ। कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूं त्वां तुमसे धर्म धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेताः हृदय में यत जो श्रेयः कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितं विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मे मुझको शिष्यः शिष्य ते तुम्हारा अहम् मैं साधि उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरणागति मंत्र, कृष्ण की शरणागति का ये मंत्र है ना। तो श्लोक को फिर से समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन क्या कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, तो कृपणता के दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है ना। तो ये है सरलता, सरलता का ये गुण है। अर्जुन के अंदर सरलता है और सरलता से उन्होंने अपने दोष को स्वीकार कर लिया है ना। और सरलता के विपरीत क्या होता है, कुटिलता है ना। तो जब कुटिलता होती है हमारे अंदर तो हम अपने दोष को दूसरों पर मढ़ देते हैं, अपने दोष को नहीं स्वीकार करते हैं, है ना। तो ये हमें सीखना चाहिए अर्जुन के इस बात से, हमें सीखना चाहिए कि कैसे सरल बने, है ना। तो अपने दोष को स्वीकार किया कि कृपणता के दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, तो मेरा चित्त धर्म में बिल्कुल मोहित है, ये धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा है, मेरा जो चित्त है ये धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा है, इसलिए पृच्छामि पूछ रहा हूं, है ना। यच्छ्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहितन्मे, तो जो भी श्रेय हो निश्चित रूप से मुझे वो बतलाइए, है ना, श्रेय जिसमें मेरा कल्याण हो निश्चित रूप से मुझे बतलाइए, है ना। तो प्रेय नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन, यत प्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहितन्मे, है ना। तो प्रेय और श्रेय ये दो बातें हैं, दो शब्द होते हैं, है ना। तो प्रेय का मतलब है जो तुरंत जिसमें सुख प्राप्त हो, इंद्रिय तृप्ति, तो वो प्रेय कहलाता है, है ना। और श्रेय जो आगे चलकर के लाभदायक हो उसको प्रेय कहते हैं। जैसे कि गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है, सात्विक सुख प्रारंभ में विष के समान हो और परिणाम में अमृत के समान हो, है ना। तो इस सात्विक सुख को ही यहाँ श्रेय समझना चाहिए, कि प्रारंभ में चाहे जितना भी दिक्कत हो लेकिन अगर परिणाम में लाभदायक है तो उसको स्वीकार करो, है ना, श्रेय उसको कहते हैं। और प्रेय क्या है कि परिणाम में चाहे जितना भी बुरा हो देखा जाएगा, ये किसने देखा है, है ना, अभी मिलना चाहिए तत्काल इंद्रिय तृप्ति, है ना। तो जैसे दुर्योधन है, है ना, तो दुर्योधन जो है प्रेय चाहता है और अर्जुन श्रेय चाहते हैं, लेकिन तो ये अंतर है। तो अर्जुन कह रहे हैं यह श्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहितन्मे, तो जिसमें कल्याण हो निश्चित रूप से मुझे वो बतलाइए, निश्चय करके बतलाइए, है ना। शिष्यस्ते हम, तो मैं आपका शिष्य हूं, साधिमाम, मुझको आप उपदेश दीजिए, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हूं, है ना। ये जो है अर्जुन की प्रार्थना है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ये केवल अर्जुन की समस्या नहीं है, हमारे जीवन में हमेशा ऐसी समस्याएं आती हैं, हमेशा इस प्रकार की स्थितियां आती हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, इधर कुआं उधर खाई, है ना। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये आती हैं बातें कि कर्तव्य का निर्णय हम कर नहीं पाते हैं, है ना। तो ये पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके, है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि पग पग पर उलझन मिलती है, है ना, और इसलिए क्या करना चाहिए, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। और एक और भी है, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। जैसे यहाँ पर भी अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके शरणागत हूँ, ना तो हम प्रपन्नम, है ना। और इस मंत्र में भी कहा गया है तस्मात गुरुं प्रपद्येत, है ना। और फिर श्रेय अर्जुन ने कहा कि जो मेरे लिए श्रेय हो वो बताइए, तो उस मंत्र में भी कहा गया है जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय का जो जिज्ञासु है वो गुरु के शरण में जाए, है ना। तो ये जरूरी है कि हम कैसे गुरु के शरण में जाए जो कृष्ण की शिष्य परंपरा में हो, जैसे अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली, है ना, उसी प्रकार से हमें ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए जो कृष्ण का प्रतिनिधि हो, कृष्ण की शिष्य परंपरा में आता हो। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दामाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है, है ना। तो ये दामनल, ये संसार जो है क्या है, दावनल। तो हम लोग रोज गाते हैं मंगल आरती में, सबसे पहले हमारा जो दिन है वो शुरू होता है इस शब्द के साथ, संसार दावनल। ठीक है ना, कि हम लोग कैसे स्थान में है, ऐसे स्थान में है जहां जंगल की आग लगी हुई है, और जंगल में आग लगती है वो कोई लगाता नहीं, है कि नहीं। किसी मकान में आग लगती है तो कोई लगाता है या कुछ अपनी ही गलती से कुछ होती है, गड़बड़ी। इन जंगल में जो आग लगती है उसमें अपनी कोई गलती नहीं होती है, सुधा लगती है ना। तो इसी प्रकार से संसार जो है ऐसा ही है, जंगल है जिसमें आग लगी हुई है, किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझन सुधा उत्पन्न हो जाती है ना। तो इस संसार ऐसा ही है। अब वैसे तो हम किसी को भी कारण बना देते हैं कि इसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, उसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, इसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, लेकिन वास्तव में असली कारण क्या है, भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति ही कष्ट बनाती है, है ना। तो तीन प्रकार के कष्ट बनाती है। तो एक आदि भौतिक कष्ट है, तो आदि भौतिक कष्ट उसे कहते हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि इसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, उसके कारण, इसके कारण कष्ट मिल रहा है, लेकिन वास्तव में हाँ ये सब कष्ट भौतिक प्रकृति बनाती है ना। वो केवल एक देखने का अंतर होता है, कि कोई कष्ट हमको ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस व्यक्ति के कारण, उस व्यक्ति के कारण मुझे मिल रहा है, लेकिन वास्तव में चाहे भौतिक आदि भौतिक कष्ट हो, चाहे अधिदेविक कष्ट हो, चाहे आध्यात्मिक कष्ट हो, इन सब के सब कष्ट भौतिक प्रकृति ने बनाए हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक वांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है ना। तो गुरु के पास जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी, और हम लोग जो है रोज जो संसार दामनल प्रार्थना गाते हैं, तो उसमें क्या प्रार्थना गाते हैं, संसार दामनल लीढ़ रोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। तो ये गुरु की परिभाषा। तो गुरुवष्टकम में हम लोग जो है गुरु की जो वंदना करते हैं, तो उसमें आठ श्लोक हैं, है ना। तो आठों श्लोकों में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं गुरु की, है ना, कि कैसा गुरु होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन सबसे पहली परिभाषा क्या है, ऐसा गुरु होना चाहिए जो संसार रूपी जो दामनल है उसमें हम जो कष्ट पा रहे हैं, तो उसको शांत करने के लिए, उस दामनल को शांत करने के लिए जो व्यक्ति मेघ है बनकर के वर्षा करे, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं, है ना। तो वही जो है अर्जुन कर रहे हैं, साक्षात कृष्ण की शरण ले रहे हैं, जो कि समस्त गुरुओं के गुरु हैं, है ना। आगे, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। तो ये जो है ये है कृपणता। प्रभुपाद जी बताते हैं कृपणता का मतलब यही है कि अगर हम कृपण हैं तो हम जीवन की समस्याओं को समझते नहीं हैं, और हम जो है जीवन जीना चाहते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे कि आप कार चलाना चाहते हो लेकिन ट्रैफिक रूल नहीं जानते, है ना। उसी प्रकार से जीवन की समस्याओं को तो आप जानते नहीं, फिर भी जीवन जीना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति का सुख लेना चाहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 3:8:10 व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो एतद् अक्षरम गार्ग्य अभिदित्वास्मान लोकात् प्रति सकृपणः। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कूकर सोकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो ये कृपण, तो अर्जुन अपने को कृपण बदला रहे कि हम जो है अगर जीवन के समस्याओं को समझाते नहीं है, समझते नहीं है, और ऐसे ही संसार को त्याग करके चले गए, हमने इस मनुष्य जीवन का कुछ लाभ नहीं उठाया, तो हम क्या हो गए? कृपण हो गए। क्यों कृपण हो गए? कृपण का मतलब यह है कि जिसके पास धन बहुत मिला था, जिसके पास धन बहुत मिला था और उसने उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और फिर उससे धन छिन गया, तो ये मनुष्य का जीवन हमको प्राप्त हुआ था और हमने इसका लाभ नहीं उठाया और ये मनुष्य का जीवन हमसे छिन गया, है ना? तो वो क्या है? कृपण है। जीव के लिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, इसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है, अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो कृपण है। ठीक है ना? तो कृपण की जो स्थिति है वो बड़ी शोकप्रद होती है, ये बड़े शोक की बात है कि नहीं? सोचिए कि कितने शोक की बात है, अगर आपको जो है मान लीजिए 10 लाख रुपया मिला, ठीक है, और आपने उसका कुछ भी लाभ नहीं उठाया और खो दिया, है ना? तो कितना कष्ट होता है, फिर शोक ही करते रहोगे जीवन भर कि 10 लाख रुपया मिला था, उससे ये ले लेते, उससे वो ले लेते, कितना लाभ उठा सकते थे, है ना? और लाभ उठाए नहीं और चला गया। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है, हमको मिला है, कितना कीमती जीवन था, है ना? और वो कुछ समय के लिए हमें मिला था और जितना लाभ उठा सकते तो उठा लेते, लेकिन लाभ नहीं उठाया तो क्या हुआ? आगे चल करके शोक ही शोक करना पड़ेगा, तो वो है कृपण। कृपण जो है आगे चल करके शोक ही शोक करता है, क्यों? क्योंकि वो सोचता है मेरे पास इतना पैसा था, है ना? अगर इसका जो है लाभ उठाता तो कितना लाभ उठा लेता, और वो तो जाना ही था, है ना? तो अगर मैं अपने लाभ में इसका जो है अगर खर्चा कर देता तो कितना अच्छा था, लेकिन वैसे ही चला गया और मैंने कुछ लाभ नहीं उठाया, है ना? तो कृपण है, कृपण जो है शो करता है, और ब्राह्मण इसके विपरीत होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं, ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन के समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतद् अक्षरम गार्गी विदित्वास्मान लोकात् प्रति स ब्राह्मणः। ये बृहत आरण्य उपनिषद में कृपण और ब्राह्मण की परिभाषा दी गई है, कैसे? एक दूसरे के विपरीत, है ना? तो ब्राह्मण इसको कहते हैं। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गमा देते हैं। मनुष्य प्रायः चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है, ना? तो ये भी कृपण, क्या कृपण है? कि जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन किसमें गमा देता है? अपने पत्नी और बच्चों और परिजनों में आसक्त होकर के गंवा देता है, तो वो कृपण है। आप सोचिए कि उस व्यक्ति को भी बहुत कृपण कहा जाता है जो क्या बटोरता है? बेकार की चीजें बटोरता है। सड़क में बहुत लोग क्या है, कूड़ा बटोरते रहते हैं, बेकार की चीजें बटोरते रहते हैं, है ना? तो वो कृपण है, है कि नहीं? और जो ज्यादा बुद्धिमान होता है, है ना, तो वो जो है कीमती चीजें बटोरता है, कीमती चीजें लेना चाहता है, है ना? और जो कृपण है, कंजूस है, तो वो जो है बेकार की चीजें, छोटी छोटी चीजें ही बटोरता रहता है, है ना? तो अगर आपको मौका मिलता है तो आपको सोचना चाहिए कि कितना हम इस मनुष्य जीवन का लाभ उठा लें, है ना? लेकिन अगर इस मनुष्य के जीवन को आप ऐसी बेकार की चीजों को बटोरने में लगा देते हैं, है ना, तो आप कृपण हैं। तो कृपण की दूसरी परिभाषा यह भी है, है ना? जैसे कि एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, अहो दुखम महदुखम दुखा दुख तरम यदा काचार्थम विस्मृतम रत्नम हरेर नाम है केवलम। कि मनुष्य के जीवन में जो कृपण होता है तो वो कांच बटोरता है, कांच बटोरता है और रत्न को छोड़ देता है। और मनुष्य के जीवन में जो ब्राह्मण होता है तो वो रत्न बटोरता है, हरि नाम का रत्न बटोरता है, है कि नहीं? तो मौका तो मिला आपको बटोरने का, अब रत्न आप बटोरो या कांच के टुकड़े बटोरो, है कि नहीं? तो जो कृपण है वो कांच के टुकड़े बटोरते हैं तो वो कृपण है ना। तो यही पारिवारिक जीवन पत्नी बच्चों परिजनों में आसक्त है होकर के जीवन बता देता है। कृपण ये सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वो ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। तो कृपण की ये भी परिभाषा है ना, कि उसकी योग्यता जितनी नहीं उतनी योग्यता अपनी समझता है, है? उसके पास इतनी योग्यता नहीं है कि अपने परिवार वालों को कि वो मौत से रक्षा कर सके, लेकिन वो सोचता है कि मैं रक्षा कर लूंगा, है ना। तो कृपण का मतलब मूर्ख भी है, तो ये भी प्रभुपाद जी व्याख्या बता रहे हैं, कृपण का मतलब मूर्ख भी होता है, है ना। तो वो अपनी वो सोचता है कि ये लोग मेरी रक्षा कर लेंगे, मेरे परिवार वाले मेरी रक्षा कर लेंगे मौत से, है ना। तो ये भी बिल्कुल मूर्खता है, और दूसरी मूर्खता कि मैं इनकी रक्षा कर लूंगा मौत से, दोनों प्रकार की मूर्खता के कारण कृपण है। और बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गए थे कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उनकी इच्छा ही उनकी उलझनों का कारण है। तो अर्जुन को जो है ये बहुत बड़ा गुण है कि अपने अंदर दोष समझ में आ जाए, आप समझे। तो अर्जुन को जो है अपनी कृपणता समझ में आ गई, है ना, ये बहुत बड़ा क्या है, गुण है, बहुत बड़ा गुण है, है? कि उनको अपना दोष दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। और बहुत बड़ा दोष वही होता है जिस जब अपना दोष ना दिखाई पड़े, जब हमें अपना दोष नहीं दिखाई पड़ता है तो वो सबसे बड़ा दोष है, ठीक है ना। जब हमें अपना दोष दिखाई पड़ता है तो वही सबसे बड़ा गुण है, है ना। तो अर्जुन का बहुत बड़ा गुण है, तो हमें ये गुण अर्जुन से लेना चाहिए। यद्यपि वे समझ रहे थे कि युद्ध करने का कर्तव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वे अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे थे। तो अर्जुन को समझ आ रहा था कि क्षत्रिय का जो है जो गौरव है, क्षत्रिय का जो गुण है वो क्या है, युद्ध करना, लेकिन मैं अपना गुण खो चुका हूं, अपना स्वभाव खो चुका हूं, मैं अपना स्वभाव खो चुका हूं, किस कारण, कृपणता के कारण। अतः वे परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहे हैं, वे कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, वे मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहते हैं, गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य हैं। तो कृष्ण आदि गुरु और अर्जुन आदि शिष्य। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझते हैं ये गीता में वर्णित है, देखो। तो अर्जुन गीता को किस तरह समझते हैं, ये विधि है समझने की, है ना। क्या विधि है, प्रश्न करना, ठीक है ना, और प्रणाम करना, समर्पण करना, और क्या, सेवा करना, ना? तो ये विधि है, तो अर्जुन इस विधि से सीख रहे हैं। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है। क्या, देखो अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे हैं, है ना, अर्जुन कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे हैं, है ना। लेकिन मूर्ख लोग जो है, अब यहां प्रभुपाद जी का जो ये सारा है वो जानते किसके लिए है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब ये गीता की टीका नहीं लिखी थी है? तो पता है प्रभुपाद जी किसकी गीता से लेक्चर दिया करते थे, डॉक्टर राधाकृष्णन की, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे भारतवर्ष के, डॉक्टर राधाकृष्णन की गीता से प्रभुपाद जी प्रवचन दिया करते थे। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की गीता में जो व्याख्या है वो इस तरह की व्याख्या है। इसलिए प्रभुपाद जी इस बात से बहुत ही व्यथित थे, बहुत ही उनको कष्ट होता था कि डॉक्टर राधा कृष्ण जो है, मतलब जहां कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में आओ, है ना, तो वो उन्होंने क्या व्याख्या में लिखा कि कृष्ण के शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो अजन्मा कृष्ण है उनकी कोई अजन्मा वस्तु है कृष्ण के अंदर तो प्रभुपाद जी इस बात से बहुत ही नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है। तो नाम तो नहीं लिया लेकिन हमको समझ लेना चाहिए कि कृष्ण की हमें शरण नहीं लेनी है। कृष्ण के अंतः और बाह्य में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के अंदर और कृष्ण के बाहर कोई अंतर नहीं है, है ना। ये कहना बहुत ही अपराध है कि हमें कृष्ण के बाहर से हमें कृष्ण की शरण नहीं लेनी है, हमें कृष्ण के अंदर से शरण लेनी है। अगर ऐसी ही बात होती है तो अर्जुन फिर क्यों बाहर से बोल रहे हैं कि मैं आपके शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए तो फिर क्यों अर्जुन ने बाहर से कृष्ण की शरण ली, है ना। और फिर इतना अधिक निंदा की गई है ऐसे व्यक्ति की जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, कि आप सोच नहीं सकते कितनी कठोर निंदा की गई है। यो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः सर्वस्मात् बहिष्कारः स्रोत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि स्थलिष्णानमाचरेत। आप सोचिए इतनी निंदा जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, यो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः सर्वस्मात् बहिष्कारः स्रोत स्मार्त विधानतः। जितने ही प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान है, सामाजिक अनुष्ठान है, उनमें से उसको बाहर कर दो, बहिष्कृत कर दो, सर्वस्मार्थ बहिष्कार स्मार्थ। और इतने से भी संतुष्ट नहीं होना है, अगर उसका मुंह देख लिया तो वस्त्रों सहित स्नान करो, वस्त्रों सहित स्नान करो, सचैल स्नान आचरित। मतलब कितना मतलब वो व्यक्ति निंदनीय है ना, ठीक है ना। तो इतनी निंदा की गई है ऐसे व्यक्तियों की, है ना। और सोचो कि ऐसे व्यक्ति गीता की टीका लिख रहे हैं, है कि नहीं। गीता की टीका में जो है ये सिद्धांत पेश कर रहे हैं कि कृष्ण की हमें शरण नहीं लेनी है, हमें कृष्ण के अंदर कुछ अजन्मा वस्तु है, कोई निराकार वस्तु है, उसकी शरण लेनी है ना। तो यहाँ प्रभुपाल जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो मेरा लेख छपा है उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, और हो सकता है कि इतना समय ना हो कि मैं पूरा पढ़ सकूं। तो इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ले रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि जितना ही अधिक भी अपने विचारों द्वारा समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही अधिक भी समस्या में उलझते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्जुन ने जो है बहुत सोच समझ कर कृष्ण की शरण ली है, क्योंकि उन्होंने सब परीक्षण कर लिए हैं, प्रयोग कर लिए हैं, ठीक है ना। इसलिए अब हमको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, अर्जुन के अनुभव का हमें लाभ उठाना चाहिए है? और अपने जीवन को जो है अब बर्बाद नहीं करना चाहिए, जीवन का समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि कृष्ण की शरण लिए बिना भी हम कुछ और इधर से उधर से कोई रास्ता निकाल सकते हैं, है ना। तो अर्जुन हर तरह से रास्ता निकाल रहे थे, ठीक है नहीं, है ना। लेकिन क्या हो रहा है, और समस्या में रास्ते जा रहे है ना। श्लोक संख्या 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन के जो विचार हैं वे केवल उनके दिमाग में कूड़ा करकट के समान है। कृष्ण क्या कहा था, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम्, कि कहां से ये कूड़ा करकट तुम्हारे दिमाग में आ गया है, कहां से आ गया है ना। तो भगवान तो पहले से कह चुके हैं कूड़ा करकट है, ये सब तुम्हारा कूड़ा करकट, तुम्हारे दिमाग का कूड़ा करकट है, है? परंतु पिछले श्लोक में अर्जुन ने फिर से उन्हीं बातों को दोहराया है। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने क्या कहा है, पिछले श्लोक में अर्जुन ने यही कहा है कि जिनको मार करके हम जीवित नहीं रहना चाहते हैं वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। तो कूड़ा करकट ही था। तो अर्जुन ने फिर वही बात दोहराई और भगवान पहले से कूड़ा करकट कह चुके हैं, है ना, और अर्जुन फिर से उसी बात को दोहराए, है ना। तो उसको कहते हैं कृपण, उसको कहते हैं कृपण, है? कि जब बता दिया कि कूड़ा करकट है इसको छोड़ दे और वो कूड़ा करकट ही बटोरे। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण ने कहा कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट है इसको फेंक, है, और जो उसी को ही बटोर रहे हैं बार बार, तो कृपण है ना। तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने फिर से उन्हीं बातों को दोहराया है। तो अर्जुन ने सोचा कि जिन विचारों को श्री कृष्ण पहले से ही कूड़ा करकट कह चुके हैं वही विचार उनके दिमाग में बार बार आ रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन अपने अंदर कृपणता का दोष देख रहे हैं। अर्जुन सोच रहे हैं कि जिस प्रकार कृपण व्यक्ति अज्ञान के कारण कूड़ा करकट बटोरने में लगा रहता है तथा असली धन छोड़ देता है, उसी प्रकार मैं भी कूड़ा करकट के समान विचारों को बार बार ग्रहण कर रहा हूं और श्री कृष्ण के विचार जो असली हीरे और रत्न के समान है उन्हें छोड़ रहा हूं। तो कृष्ण सामने खड़े हैं, है ना, तो उनका ज्ञान ना लेकर के कृष्ण का जो ज्ञान है, कृष्ण के विचार हैं वो असली रत्न है, उनको छोड़ करके कूड़ा करकट बटोर रहा हूं अपने विचारों में, है ना। जिस प्रकार एक बालक अज्ञान के कारण अच्छे रंग के दिखने वाले कागज के टुकड़ों को बटोरता है, है ना, और कागज के असली नोटों के महत्व को नहीं समझता, है ना। एक बच्चे को आप देख लो करके, है? वो क्या करेगा, असली नोट है वो नहीं लेगा, वो ज्यादा रंगीन कागज है उनको ही वो उठाएगा, है ना। उसी प्रकार अर्जुन ऊपर से अच्छे दिखने वाले विचारों को पकड़े हुए हैं, है? अब ये विचार ऊपर से बड़े अच्छे लगते हैं, क्या कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं, मैं विजय नहीं प्राप्त करना चाहता, मैं राज्य नहीं प्राप्त करना चाहता, मैं भोगों को नहीं प्राप्त करना चाहता, तो कितना अच्छा विचार लगता है, आह कितना बड़ा त्याग है अर्जुन का, कितने ऊंचे विचार हैं अर्जुन के, और आजकल ये चल ही रहा है ना। तो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं विचार, इसलिए क्या है, देश की सेवा है, समाज की सेवा है, मानवता की सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, तो ये सब जो है विचार बड़े अच्छे लगते हैं, है? कहने में सुनने में ये बड़े अच्छे विचार लगते हैं, लेकिन ये जो है छोटे से बच्चे को जैसे रंगीन कागज के टुकड़े दिए जाए तो उनको जो है अच्छा वो पसंद करता है, है ना, और असली नोटों को वो छोड़ देगा, है ना। तो कृष्ण की जो विचार है, कृष्ण के उपदेश गीता के, उनको छोड़ देगा, है ना, और इसमें लगेगा, हाँ, मानव सेवा, माधव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, है ना। तो ये जो विचार हैं ये वो है, ऐसे इनको पकड़े हुए, जबकि उन विचारों का कोई महत्व नहीं है। सामान्य दृष्टि में अर्जुन के विचार त्याग से भरे हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में उनका कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार असली हीरों के सामने कांच के टुकड़ों का कोई महत्व नहीं है, जिस प्रकार कोई कृपण व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति के सामने खड़ा होकर अपने गिरे हुए थोड़े से चावल के दानों के लिए शोक करता है, कृपण है, धनी व्यक्ति के सामने जाता है और शोक कर रहा है कि मेरे चावल के दाने गिर गए, थोड़े से चावल के दाने गिर गए, अरे कितना धनी व्यक्ति है वो, उसके सामने तुम शोक कर रहे हो इसके लिए। उसी प्रकार अर्जुन अपने कुटुंबियों के लिए श्री कृष्ण के समक्ष शोक कर रहे हैं, तो कहां कृष्ण है, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी है, और तुम्हारा कुटुंब क्या है उनके सामने। अर्जुन का कुटुंब थोड़े से चावल के दानों के समान है, और श्री कृष्ण का आध्यात्मिक जगत क्या है, चावल के असीमित भंडार के समान है। जिस प्रकार कृपण व्यक्ति का धनी व्यक्ति के समक्ष थोड़े से चावल के दानों के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि वो धनी व्यक्ति तो से चावलों की बहुत बड़ी मात्रा प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार अर्जुन का श्री कृष्ण के समक्ष अपने कुटुंब के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि वे श्री कृष्ण से उनके भक्तों को बहुत बड़ा समाज प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब है अवंती के ब्राह्मण की कथा, इसको सुनिए बड़े ध्यान से। कृपण उस मनुष्य को भी कहा जाता है जिसके पास बहुत धनराशि होते हुए भी वो अपने सुख सुविधा के लिए अपने धन का सदुपयोग नहीं करता। कितने दुर्भाग्य की बात कि उसके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन तो भी वो फटे कपड़े पहनता है कि नहीं, और टूटे फूटे मकान में रहता है, और रूखा सूखा भोजन करता है, तो वो भी कृपण है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में अवंती के एक ब्राह्मण की कथा आती है, जो अत्यंत धनी था, परंतु कृपण होने के कारण वो धन से ना तो अपने शरीर को और ना ही अपने परिवार को सुख देता था। वो ना तो अतिथियों का सत्कार करता था, क्यों, कृपण था, और ना ही धार्मिक कार्यों में धन खर्चा करता था। उसकी कृपणता के इस व्यवहार से उसकी पत्नी भी रुष्ट रहती थी, उसके पुत्र भी और सेवक भी रुष्ट रहते थे, और यहां तक कि देवतागण भी रुष्ट रहते थे। एक दिन ऐसा भी आया कि उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। उस ब्राह्मण का कुछ धन उसकी पत्नी और बच्चों ने छीन लिया, और कुछ धन समय के फेर से नष्ट हो गया, कुछ सामान्य जनों ने और कुछ राजा के अधिकारियों ने ले लिया। अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा और शोक हुआ। अब सोचिए उसे कितना पीड़ा होगी, क्योंकि वो खर्चा ही नहीं कर रहा था, बड़े कष्ट में भी वो पैसा खर्चा नहीं कर रहा था, और वो पैसा चला गया उसका, है ना। अब ये कथा प्रत्येक मनुष्य पर लागू होती है। अब अगर गहराई से देखें तो आपकी ही कहानी है ये, हमारी कहानी है ये। हम तो सोचते हैं कि वो मूर्ख था, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए गहराई से तो हम ही ऐसे हैं। अब क्यों, कैसे, श्रीमद् भागवत ये कथा प्रत्येक मनुष्य पर लागू होती है यदि इस भौतिक जगत के असंख्य जीवों की तुलना साधारण व्यक्तियों से की जाए, और असंख्य जीवों की तुलना में पृथ्वी के संपूर्ण मनुष्यों की थोड़ी सी संख्या की तुलना अवंती के ब्राह्मण से की जाए। अब ये समझिए क्या कि अवंती के ब्राह्मण के पास बहुत धन आ गया, है ना। कैसे आ गया, अचानक आ गया, किसी प्रकार से आ गया, है ना। तो ये मनुष्य का जो जीवन है, ये जो हमारे पास आ गया बहुत बड़ा धन, है ना, तो ये भी उसी प्रकार से, किसी प्रकार से आ गया, किस प्रकार आ गया हम नहीं जानते, ये बहुत बड़ा धन आ गया हमारे पास। आप ये सोचिए, है ना। तो अवंती के ब्राह्मण के पास जो धन आ गया बहुत ज्यादा, उसी प्रकार से हमारी स्थिति है कि हमको क्या मिल गया है, बहुत बड़ा धन, क्या है, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन प्राप्त हो गया है, ठीक है ना। अब आप मिलान करेंगे कि आपकी स्थिति ऐसी ही है जो अवंती के ब्राह्मण की, है ना। तो हम इस कथा का सार समझ सकते हैं, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में किसी बिरले निर्धन व्यक्ति को अचानक बहुत बड़ा धन मिल जाता है, जिस प्रकार अवंत के ब्राह्मण को धन प्राप्त हो गया, उसी प्रकार किसी किसी बिरले जीव को मानव जीवन रूपी बहुत बड़ा धन मिल जाता है। जिस प्रकार बहुत बड़े धन के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के सब प्रकार की सुरक्षा और सुविधा प्राप्त कर सकता है, है ना। अगर बहुत धन मिल जाए तो अपने जीवन की सब प्रकार से सुरक्षा और सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जीव मनुष्य जीवन रूपी धन के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करके अगले जन्म जन्मांतरों को सुखी बना सकता है, जन्म जन्म के लिए वो सुखी हो सकता है, अगर मनुष्य जीवन को क्या करे, कृष्ण की सेवा में लगाए, है कि नहीं। कृपण, कृपण क्या करते हैं, उस धन को उस धन को खर्चा नहीं करता है, अपने सुख सुविधा प्राप्त करने में उस धन को खर्चा नहीं करता है, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा हाल है कि हम अपने मनुष्य के जीवन को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते, जिसमें कि सब प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, है ना। जीव मनुष्य जीवन रूपी धन के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करके अगले जन्म जन्मांतरों को सुखी बना सकता है। जिस प्रकार कृपण व्यक्ति बहुत बड़ा धन प्राप्त करके भी उसके द्वारा अपने लिए सुख सुविधा नहीं प्राप्त करता है, उसी प्रकार अनेक जीव मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवत भजन के द्वारा अपने कल्याण को प्राप्त नहीं करते। जिस प्रकार कृपण व्यक्ति अपने धन में से एक पैसा भी अपने सुख के लिए खर्च करना नहीं चाहता है, समझ रहे, कृपण व्यक्ति उसके पास करोड़ों रुपए हैं, एक पैसा भी अपने सुख के लिए खर्चा नहीं करना चाहता है, उसी प्रकार अनेक कृपण जीव मानव जीवन का एक क्षण भी श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मंदिर आइए तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अगर आप कहें उनसे कि एक मिनट के लिए गीता खोल करके पढ़ लिया करो तो हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब एक पैसा भी नहीं खर्चा करना चाहते अपने सुख सुविधा के लिए, तो कृष्ण की सेवा में एक मिनट का टाइम भी वे नहीं लगाना चाहते, है ना। लेकिन वो सब पैसा उनका जा रहा है, वो सब पैसा उनका जा रहा है, है ना। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी जा रहा है, जाएगा, क्या रोक लेंगे। आप कहते हैं आपके पास टाइम नहीं है, है ना, तो टाइम तो निकल रहा है, जा ही रहा है, अब बर्बाद हो ही रहा है, तो वो बर्बाद होने देते हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा में टाइम नहीं लगाएंगे, है कि नहीं। तो वो कृपण है ना, जिस प्रकार कृपण व्यक्ति का सुरक्षित धन अचानक ही लुट जाता है, अचानक ही लुट जाता है, अथवा जिस प्रकार अवंति के ब्राह्मण का धन अचानक ही लुट गया, उसी प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को ना लगाने वाले व्यक्ति का जीवन अचानक ही मृत्यु रूपी लुटेरे के द्वारा छीन लिया जाता है। लो चला गया सब, 10 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था और एक पैसा भी खर्चा नहीं किया आपने सुख सुविधा के लिए, और वो सब इकट्ठा 10 करोड़ रुपया किसी ने छीन लिया, अच्छा हुआ, है ना। तो उसी प्रकार से मृत्यु रूपी लुटेरे ने छीन लिया अपने जीवन धन सब। जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन को किसी बड़े व्यापार में लगा करके असीमित धन का लाभ प्राप्त कर लेता है, परंतु कृपण व्यक्ति अपनी कृपणता के कारण अपना धन व्यापार में नहीं लगाता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में लगा करके असीमित सुख का जीवन प्राप्त कर लेता है, असीमित सुख प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य का जीवन जो है एक कितना बड़ा जो है कीमती रत्न है कि अगर आप इसको कृष्ण की सेवा में लगाते हो असीमित सुख प्राप्त कर सकते हो, आप असीमित सुख प्राप्त कर सकते हो, बहुत बड़ा रत्न है मनुष्य का जीवन, है ना। लेकिन वो नहीं लगाया और खो दिया, परंतु कृपण व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को ना लगा करके निरंतर दुख भोगता रहता है, है ना। तो इसमें बहुत से बिंदु हैं जिंदगी की हमने चर्चा की है, तो अब इतना समय नहीं है हमारे पास में, तो अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं या कोई चर्चा किसी की ओर से, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, मैं प्रश्न करूं आपका। हाँ, इनका प्रश्न है कि कृष्ण की सेवा क्या है, वास्तविक सेवा क्या है। कृष्ण की वैसे तो अगर हम गहराई से देखें तो कृष्ण की सेवा हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर वास्तविकता में देखें तो हम कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण की असीमित शक्तियां हैं, असंख्य शक्तियां हैं और वे शक्तियां उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, है ना, और वही सब जीवों का पालन करते हैं, तो हम क्या कृष्ण की सेवा करेंगे, है ना। लेकिन कृष्ण इस बात से ही हमारी सेवा मान लेते हैं कि हम अपना समय उनके लिए लगाते हैं, है ना। अगर हम अपना समय लगाते हैं उनके लिए, है ना, तो कृष्ण अपनी सेवा इसमें मान लेते हैं। हम उनका नाम लेते हैं, ठीक है ना, हम उनकी कथा श्रवण करते हैं, ठीक है ना, हम उनका प्रचार करते हैं, है ना। वैसे तो कृष्ण के लिए इसमें कुछ भी लाभ नहीं है, कृष्ण कुछ भी लाभ नहीं है, लेकिन कृष्ण देखते हैं कि हम त्याग कर रहे हैं, उनके लिए हम इतना त्याग कर रहे हैं, हम उनके लिए अपना समय दे रहे हैं, है ना, तो कृष्ण जो है इसको अपनी सेवा मान लेते हैं। तो कृष्ण के अनुकूलता में अगर हम कुछ कार्य करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, है ना, तो जैसे एक बच्चा होता है, है? तो पिता का ही दिया हुआ भोजन और पिता की थाली में से वो निकाल करके और पिता के मुंह में डालता है तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है। तो बच्चे ने क्या सेवा की, ये तो सेवा की भावना है केवल, और कुछ भी हम सेवा नहीं कर सकते कृष्ण की। तो मतलब कहने का यह है कि हम अपनी इंद्रियों को लगाएं कृष्ण की सेवा में, ठीक है ना, तो कृष्ण जो है प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्ण को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वे आत्मा राम है और वे आत्म काम है। आत्मा राम माने वे अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, है ना, और आत्मा तो राधे का आतश है और राधे का उनकी आत्मा है, तो कृष्ण को जो है आनंद प्राप्त होता है राधा रानी से, तो उनको जो है और किसी भी आनंद की आवश्यकता नहीं है, है ना, लेकिन वे फिर भी आनंद लेते हैं, हमारी सेवा का भी आनंद लेते हैं, हमारी सेवा की भावना होती है तो वो आनंद लेते हैं। भावग्राही जनार्दन, है ना, तो सेवा की भावना से हम कुछ भी कार्य करते हैं कृष्ण के लिए तो वे उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसको भी सेवा मान लेते हैं, है ना। तो सभी इंद्रियों से जो है आप कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे अम्बरीश महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया, सवै मनहा कृष्ण पदार विंदयो, है ना, तो मन से आप कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कैसे, कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को लगाएं। वचन से वैकुंठ गुणान वर्णने और वाणी के द्वारा उन्होंने कृष्ण की सेवा की, कैसे, उनके गुणों के वर्णन में, उनके गुणों का वर्णन करके। अगर आप गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो नाम का ही वर्णन करिए, ठीक है ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम चैतन्य महाप्रभु, है ना, कलयुग में जो है भगवान प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु में, अभी कैसे हैं, कृष्ण वर्णम, कृष्ण के जो अक्षर हैं, कृष्ण नाम के जो अक्षर हैं, तो उनका वर्णन करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, है ना, जिस प्रकार से जो है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, है ना। भजन से वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरेर मंदिर मार्जन आदि, हाथों को जो है भगवान के मंदिर के मार्जन आदि कार्य में लगाना, है ना, उसमें और कई कारण, कई कार्य हैं, हाथों से श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन मंदिर मार्जन आदो, है ना, तो श्री विग्रह की आराधना भी हाथों से होती है, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारतन, नाना प्रकार का श्रृंगार भी हाथों से किया जाता है, तन मंदिर मार्जना दो, है ना, और हाथों से बहुत से कार्य होते हैं, है ना, भक्तों की सेवा होती है, प्रसाद वितरण होता है और पुस्तक वितरण होता है, गीता मैराथन होता है, तो ये भी हाथों से होता है, है ना। तो सवे मनः कृष्ण पदार विंदी और वचान से वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, जो कान है वो भगवान की सत कथा के उदय में लगाते हैं। जहां भगवान की सत कथा, सुंदर कथा, पवित्र कथा का उदय हो वहां पर कान लगाना, तो ये भी कृष्ण की सेवा है। स्तुतिम चकार अच्युत सत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, और आंखों को दृष्टि को कृष्ण की सेवा में लगाना है। कैसे? मुकुंद लिंग आलय, तो भगवान के जो आलय हैं, भगवान के जो निवास स्थान मंदिर है, तो उनके दर्शन में जो है नेत्रों को लगाना है। मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो तद्भृत गात्र स्पर्शिंग संगमम, और जो अपने अंग संग है वो उनके सेवकों, उनके भक्तों के शरीर के स्पर्श करने में लगाया। और घ्राणम तत्पाद सरोज स्वरभि, और जो घ्राण इंद्रिय है उसको उनके चरण कमलों में चढ़े हुए फूलों को सूंघने में लगाया है ना। श्रीमत तुलस्य रसना तदर्पिते, और उनको अर्पित जो श्रीमती तुलसी है तो उन उसमें जो है अपने रसना इंद्रिय को लगाया, स्वाद इंद्रिय को लगाया है ना। श्रीमत तुलस्य रसना तदर्पिते, और पादों हरे क्षेत्र पथानुसार पड़े, और पैरों को लगाया भगवान के क्षेत्र के पथ में अनुसरण, भगवान के स्थानों में पैदल चलने में लगाया, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है, ठीक है। और कोई प्रश्न है आपका? इनका सुझाव है कि ऐसा भी कह सकते हैं कि कृष्ण के अंदर शरण लो, कृष्ण की शरण न लो, तो इसको भी कह सकते हैं कि कृष्ण के अंदर कृष्ण के भक्त हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो जो विचार है वो तो बहुत अपराधी विचार है, जो कहते हैं कि हमें कृष्ण की शरण नहीं लेना है। ये तो बहुत गलत है ना, कृष्ण की शरण नहीं लेना है मतलब कृष्ण के शरीर को भौतिक मान लिया ना। देह देही विभेदो यम नास्ति ईश्वरे कचित, ईश्वर में देह और देही का अंतर नहीं है, ईश्वर में शरीर और आत्मा का अंतर नहीं है, है ना। जैसे हम बद्ध जीव हैं, तो बद्ध जीवों के लिए जो भौतिक शरीर है ये असत है, है? असत है, और जो आत्मा है वो सत है कि नहीं। तो बिल्कुल उल्टा है, शरीर और आत्मा बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे हैं, है ना। तो कृष्ण में ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है विचार बड़ा अपराधपूर्ण है कि हम जब सोचते हैं कि हमें कृष्ण की शरण नहीं लेनी है और कृष्ण के अंदर कुछ निराकार चीज है उसकी शरण लेनी है, है ना। ठीक है, तो कितना समय हो गया, ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।
हरे कृष्ण, सबसे पहले हम सभी लोग इस ग्रेस गीता मित्र प्रभु का धन्यवाद देंगे, इसमें हम तीन बार हरी बोलेंगे। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हृदय जीतन तो पिछले 27 सालों से सेवा में हैं, और 27 सालों में शायद ही कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन प्रभु जी ने मंगला आरती भी सुनी होगी। मैं पहले बता चुका हूँ इस बात के लिए, प्रभु जी किसी भी हालत में हो, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्रभु जी को पूरी कभी भी मंगला आरती भी सुनी करते हैं। और जैसा कि प्रभु जी ने अपने इस थोड़े से समय के अंदर इतना अच्छा हमें अनुभव दिया, अपना भक्ति का ख्याल में बताया, तो हम सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज प्रभु जी के वचनों का अनुसरण करें और थोड़ा थोड़ा इसमें आगे बढ़े धीरे धीरे। इसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट है। सबसे पहले हमारे आज 3 भक्तों के बर्थडे हैं, बर्थडे बॉयस, और एक ऐसे माता जी हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेज को बुलाना चाहूंगा पवन प्रभु जी, इनका आज बर्थडे है। तो पवन प्रभु जी हैं प्रभु जी आ रहे हैं। तो उसके बाद पत्रिका माता जी, ये हमारे 2 साल की माता जी हैं छोटी सी, तो करता है वो मंच पे आए पुत्री से आशीर्वाद के रूप में माला और ये थोड़ा सा जल्दी करिए माता जी, थोड़े से अनाउंसमेंट ज्यादा है। आप साथ में आ जाइए कि माता जी साथ में आ जाइए।
पत्रिका,
पत्रिका माता
कौन है
ये माता
ये पत्रिका? भगवत दर्शन पत्रिका है, हिंदी वाली पत्रिका, इंग्लिश वाली पत्रिका, कौन सी पत्रिका है? हरे कृष्णा।
तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के
उसका धन्यवाद, हमारे लिए धन्यवाद करके।
हरे कृष्णा,
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
अच्छा अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा।